बाता है मन गीत खुशी के गाता है।
सिमर सिमर सुख पाता है मन गीत खुशी के गाता है।
प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा,
प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा,
मोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन गीत खुशी।
बहुत बहुत समय पहले एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, जो कि एक बहुत बड़ा भक्त भी था, किसी समुद्र यात्रा पर गया और जब यात्रा कर रहा था अपने जहाज में, तो अचानक तूफान आ जाता है। बहुत से यात्री तो उस तूफान में जहाज से गिर जाते हैं, जहाज कहीं जाकर टकरा जाता है, बहुतों की मृत्यु हो जाती है। परंतु ये जो भक्त था, बड़ी ही मुश्किल से स्वयं को बचाते हुए किसी एक टापू पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त होता है तो जब ये घटना होती है तो भगवान से कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रार्थना करता है। उस टापू पर वो अकेला भटकता है, घूमता है, कोई नहीं था वहां पर, ना तो कोई मनुष्य ना कोई प्राणी, ऐसा वो निर्जन टापू था। एक दिन, दो दिन, तीन दिन अकेला उस टापू पर भटकते रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान को जोर जोर से पुकारता है कि हे प्रभु, तूने मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर दिया। एक हफ्ता गुजर जाता है। अब उसका जो विश्वास था ईश्वर पर वो कम होने लगता है। दो हफ्ता, तीन हफ्ता, चार हफ्ता अकेला फल खाता है, वहां पर जो कुछ मिलता है बस उन्हीं के आधार से जिंदा रहता है। धीरे धीरे उसका विश्वास जैसे पूरी तरह टूट जाता है और भगवान से कहता है कि मैं आज नहीं मानता कि तू भी है। अगर तू होता तो जीवन भर मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं किया, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ऐसे ही झाड़ के नीचे, कभी पत्तों के नीचे रात को सोकर और दिन भर भटककर वो अपना समय बिताता है। फिर एक दिन सोचता है क्यों ना मैं एक झोपड़ी बना लूं, और बहुत मेहनत करता है, लकड़ियां तोड़कर एक झोपड़ी बनाता है और रात हो जाती है। आज उसे थोड़ा संतोष होता है कि इतने दिन खुले में सोने की बजाय मैं अपनी झोपड़ी में सोऊंगा, कि अचानक ऐसा होता है कि मौसम बदलता है और आसमान में बिजली कड़कती है और एक बिजली तेजी से आकर उसकी झोपड़ी पर गिरती है और झोपड़ी को आग लग जाती है और वो कैसे वैसे स्वयं को बचाते हुए कूदता है बाहर और झोपड़ी से बाहर आ जाता है। अब तो उसके विश्वास, निष्ठा, फेथ जो भगवान पर था पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और घुटनों के बल टेक कर वो गुहार लगाता है, हे प्रभु तू इतना निष्ठुर हो जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पहले तो मैं यहां अकेला, इतना दिन से कोई मदद नहीं और आज इतनी मुश्किल से मैंने ये झोपड़ी बनाई उसको भी तूने आग लगा दी, क्या यही तेरा न्याय है? क्या इसके लिए मैंने तेरी इतनी भक्ति की थी? जब वो पुकारता ही है उस समय अचानक उस टापू पर दो व्यक्ति भागते हुए आते हैं। उसे आश्चर्य होता है ये दो कौन लोग हैं, इतने दिनों से मैंने यहां किसी को नहीं देखा, यह ऐसा निर्जन टापू चारों ओर से समुद्र ही समुद्र। तो वो दो लोग आकर उसको कहते हैं हम लोग समुद्र यात्रा पर थे और जब हमने देखा यहां पर आग लगी हुई है तो हमको लगा यहां कोई व्यक्ति है, अच्छा किया तुमने तुम्हारी झोपड़ी को आग लगा दी, नहीं तो हमें पता कैसे चलता, अंधेरी रात थी हम तो अपनी डगर से जा रहे थे, अच्छा ही किया तुमने जो कि अपनी झोपड़ी को आग लगा दी तो हमें पता चला कि यहां तुम हो और वो व्यक्ति। तो इतना निराश और इतना दुखी हो जाता है, अचानक फिर से घुटनों के बल टिकता है और भगवान से कहता है मुझे क्षमा कर देना, मैं तुझे जान नहीं पाया, तेरा प्रेम, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी अनुकंपा अपरंपार है। और ईश्वर के प्रेम में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज सुबह की मुरली, मुरली का वरदान क्या है याद है? भगवान क्या कर देखे देते तुम्हें थाली में? रूहानी प्यार, ईश्वरीय प्यार, परमात्मा स्नेह के हीरे मोती भर भर कर भगवान तुम्हारे सामने रखते हैं। इसके लिए थोड़े में खुश मत हो जाना, संपन्न बनो। परमात्मा प्रेम में समा जाना ही क्या है, संपूर्ण ज्ञान है और परमात्मा प्रेम योग है। संपूर्ण ज्ञानी और संपूर्ण योगी अर्थात उसके प्रेम में समा जाना, उसके प्यार के सागर में खो जाना। क्या ऐसा हमें अनुभव होता है? यह योग बहुत मुश्किल है। वो भोलानाथ बनकर आया है, तीसरा नेत्र देने आया है, ज्ञान खजानों से भरपूर करने आया है, ज्ञान शंख उसने हमें दे दिया है। तो जितना उस परमात्मा के प्रेम में हम खो जाएंगे उतनी आत्मा में शक्ति भरेगी। तो इस पट्टी की शुरुआत एक छोटे से योग से करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, किताब डायरी पेन पेंसिल सब नीचे रख देंगे। इसमें हमें करना क्या है पहले वो सुन लेंगे। स्थूल शरीर को यहीं छोड़ सूक्ष्म शरीर धारण कर सूक्ष्म वतन में जाना है। वहां देखना है कि अव्यक्त बाप दादा सम्मुख खड़े हैं, बाबा के हाथ में एक थाली है जो कि आज बाबा ने वरदान में कहा, और उस थाली में परमात्मा प्रेम के हीरे और मोती है, और वो हमें वो सारे हीरे मोती दे रहा है। हम अपनी झोली को उस ईश्वरीय प्रेम, उस अलौकिक प्रेम, वह डिवाइन लव, वह गॉडली लव, वह स्पिरिचुअल लव, वह सुपर नेचुरल लव, वह अनअर्थली लव, वह प्यार जो इस संसार का नहीं है, उस प्यार से हमारी झोली भर रहा है। उस प्यार में समा जाना, उस प्यार में खो जाना ही संपूर्ण ज्ञान है और संपूर्ण योग है। और बाबा फिर हमें वरदान दे रहा है, उसने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया है। तो चले, सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान चेतना की बहुदिव्य किरण मैं हूं। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं, एक तेजस्वी, एक तपस्वी आत्मा हूं। देह की सारी हलचल समाप्त, कोई आवाज नहीं, संपूर्ण मौन, देह की भान से परे अवस्था, शरीर की भी सारी हलचल समाप्त, संपूर्ण देह संपूर्ण निश्चल अवस्था में, एकाग्र बुद्धि, एकाग्र चित्त मैं, एक अत्यंत तेजस्वी आत्मा हूं। तपस्वियों में महातपस्वी, ऋषियों में राज ऋषि, संपूर्ण चेतना भूमध्य में केंद्रित मैं, देह से न्यारी एक आत्मा हूं। देख रहा हूं धीरे धीरे यह देह पांच तत्वों में विलीन हो रही है, मैं आत्मा, सूक्ष्म शरीर को लेकर उड़ रही हूं ऊपर आकाश में, तत्वों से बाहर, इस संसार से परे, पहुंच गए एक सूक्ष्म वतन में। मेरी आंखों के सम्मुख अव्यक्त बाप दादा है। बाबा की वह रूहानी दृष्टि मुझ पर देख रहा हूं, उसे जन जन से पाने को जिसको तड़पा था, जिसे पाकर जीवन तृप्त हो गया। त्रिभुवन में और कुछ पाना बाकी नहीं रहा, वह परमात्मा बाबा की वह शक्तिशाली दृष्टि, अनंत शक्तियों की वह धाराएं मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा के हाथ में ये कैसी थाली है, ये कौन से हीरे और कौन से मोती चमक रहे हैं। देख रहा हूं इस अलौकिक दृश्य को, बाबा कह रहे हैं बच्चे ये परमात्मा प्रेम के हीरे और मोती है, बाबा ये सभी हीरे मोती मेरी झोली में डाल रहे हैं, भगवान का वरदहस्त सिर पर है। बच्चे इस प्रभु प्रेम से ओतप्रोत हो जाओ, रग रग में समाने दो इस ईश्वरीय प्रेम को। बाबा को मैं देख रहा हूं, उसकी वह रूहानी नजर कैसा ये अनुभव है, किस पवित्रता का अनुभव रहा है। मैं आत्मा भर चुकी हूं, इस संसार का सबसे बड़ा खजाना रूहानी प्यार, ईश्वरीय प्यार से। और इसी अवस्था में मैं फरिश्ता अत्यंत हल्का, इसी निर्बोध अवस्था में धीरे धीरे नीचे उतरता हूं। और नीचे परमात्मा प्रेम से परिपूर्ण, ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत इस संसार की संपूर्ण विस्मृति, इस दिव्य अलौकिक अनुभव के साथ मैं फरिश्ता पुनः इस पार्थिव देह में प्रवेश करता हूं। ओम शांति। जो भी आत्मा बाबा की बनी है उसने अपने जीवन में कभी ना कभी तो यह अनुभव जरूर किया है कि इस संसार में परमात्मा प्रेम से बड़ा और कोई प्रेम नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। संसार में जो भी प्रेम है, संसार के जो भी प्रेम है तथा कथित, सभी कहीं ना कहीं स्वार्थ से आधारित है, स्वार्थ से जन्म लिया है उन्होंने। ईश्वरीय प्रेम ही एकमात्र ऐसा प्रेम है जो कि संपूर्ण निस्वार्थ है। तो आज इस भट्टी में हम शुरुआत करेंगे सिमर सिमर सुख पाओ, और साथ ही साथ क्या है दूसरा, सिमर सिमर दुख भी पाओ। क्या हम करें, कौन सा चिंतन करे और कौन सा मनन करे और कौन सा अध्ययन करे और कौन सा मंथन करे कि जिसको कर कर आत्मा सुख से भरपूर हो जाए, सुख से भर जाए। संसार में अथाह दुख है, चारों ओर संसार की ओर एक नजर तो जहां देखोगे वहां क्या मिलेगा, दुख ही दुख। कल की साकार मुरली में बाबा ने कहा था ये सारी दुनिया ही वनवाहों में, इसमें रखा ही क्या है। हमेशा कहते हैं तुम वनवाहों में हो, कल कहा था दुनिया ही वनवाहों में, इस दुनिया में क्या रखा है। तो ऐसी हम कुछ बातों की लिस्ट निकालेंगे कि जिसका चिंतन करते ही मन आनंद से भर जाए, सुख से भर जाए। सिमिरन, सिमिरन अर्थात बार बार दोहराना। एक है मनन, एक है सोचना और एक है मनन, ये दो चीजें हैं। एक है सोचना, दूसरा है मनन करना या मंथन करना। सबसे पहले तो इन दोनों में क्या अंतर है वो हम जानेंगे। एक है सोचना, सोचना अर्थात तैरना, सोचना अर्थात तैरना, और मनन करना अर्थात डूबना, गहराई में जाना। सोच तो दिन भर रहे हैं, परंतु क्या उस सोच को मनन कहा जाएगा, नहीं। मनन अर्थात एक ज्ञान का बिंदु लेना और उसकी गहराई में जाना, इतनी गहराई में जाना, इतनी गहराई में जाना कि वो मनन करते करते ही आत्मा क्या हो जाए, मगन। दो मार्ग है, एक ज्ञान का एक योग का। दोनों ही मार्ग से अगर जाया जाए जो ऊपर पहुंचेंगे, दोनों में अवस्था एक ही है। योग में गहराई में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, परमात्मा प्रेम में और गहरे और गहरे और गहरे। एक समय आएगा कि हम खो जाएंगे, फिर हम ना रहेंगे। जैसे कि वो नमक का पुतला है, उसको लगा कि सागर कितना गहरा है मुझे जानना है। किसको लगा, नमक के पुतले के मन में जिज्ञासा जागृत हुई, मुझे सागर को थाना है, कितना वो अथाह है उसको मुझे जानना है, उसकी गहराई की मेजरमेंट करनी है। और उसने क्या किया, एक छलांग लगा दी और गिनता गया कितना गहरा है कितना गहरा है, और धीरे धीरे क्या होते गया, खुद ही वो उसमें खो गया। फिर ये बताना मुश्किल था ये कौन है और वो कौन है, नमक कहाँ है और पानी कहाँ है। ये प्रक्रिया है खोने की। उसके प्रेम के सागर में ऐसे खो जाओ कि वो और हम एक हो जाए। चाहे ज्ञान में खो जाओ, चाहे योग में, ये परमात्मा प्रेम ही योग है। बाबा ने आज कहा, कितना सुंदर वाक्य है आज की मुरली में। ईश्वरीय प्रेम क्या है? यही योग है, इसी प्रेम में पड़ जाओ। विदेश में एक संत कवि हुआ था क्रिश्चियनिटी में, सेंट बर्नार्ड। द मैन हु फेल इन लव विद गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर के प्रेम में पड़ गया, ऐसा उसका वर्णन आता है। सात भाई दिखाए हैं। पहला भाई सन्यासी बन जाता है, वहां जो मठ होता है मोनेस्ट्री, उसमें समर्पित हो जाता है, क्योंकि सोचता है मुझे अपना सारा जीवन परमात्मा के कार्य में लगाना है। दूसरा भाई उसको देखता है, वो सोचता है मैं संसार में क्यों रहूं, मैं भी अपने बड़े भाई के साथ रहूंगा, और दोनों हो जाते हैं। तीसरा भाई, चौथा भाई, पांचवा, छठवा, छह के छह चले जाते हैं। एक भाई बच जाता है छोटा सा, वो छह उसको कहते हैं ये जो लौकिक प्रॉपर्टी है तुम इसको संभाल लेना, हम लोग तो जा रहे हैं। वो छोटा कहता है, निनाड जिसका नाम होता है, वो कहता है यू टुक द हेवन एंड गिव मी द अर्थ, तुमने स्वर्ग ले लिया और मुझे धरती दे रहे हो, मैं भी आता हूं। और वो भी उनके साथ चला जाता है। द फैमिली दैट ओवर टुक क्राइस्ट, किताब का नाम है द फैमिली दैट ओवर टुक क्राइस्ट, ऐसा परिवार जो जीसस क्राइस्ट से भी आगे चला गया। लिखा है उसमें, उस लेखक ने, कि मैं ईश्वरीय प्रेम में ऐसा घायल हूं, ईश्वरीय प्यार का तीर ऐसा चुभा है, क्या करूं, किसके पास जाऊं, कहां से दवाई लूं। ये वो आत्माएं हैं संसार की जिन्होंने भगवान को नहीं जाना था, परंतु फिर भी उसके प्यार में खो गई थी, समा गई थी, जीवन को अर्पण कर दिया था उस प्रभु के नाम। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, ये संसार और संसार में जो भी सुख है सब कुछ व्यर्थ था उनके लिए। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यहां का, ये संसार उनके लिए था ही नहीं। जैसे ऐसा वैराग का परम भाव हृदय में था, ऐसी ईश्वरीय प्रेम की ज्योति उनके हृदय में जल रही थी, कुछ भी करने को तैयार थे। क्या ऐसा प्रेम हमारे हृदय में भी है, कि हम केवल मुरली सुनते हैं, लिखते हैं और बस, और थोड़ा बहुत सोचते हैं। हम बात कर रहे थे सोचने की और मनन करने की। सोचना अर्थात ऊपर ऊपर से तैरना, और मनन करना अर्थात गहराई में उतरना। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका हम सिमरन करें, और सिमरन करना अर्थात बार बार याद करना, रिपीटिशन, एक ही चीज को बार बार याद करना, इतना याद करना, इतना याद करना, इतना याद करना, कि जिसको हम याद कर रहे हैं वो हम बन जाए। जैसे गोपियों की अवस्था थी, याद कृष्ण को कर रही थी, परंतु उसको याद करते करते खुद ही कृष्ण बन चुकी थी। उद्धव ने कितना समझाया परंतु वो नहीं मानी। जिससे प्यार है उसमें समा जाना, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, अव्यक्त मुरली, बाबा कहते हैं तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है। जिसका जिससे प्यार है उसको उसके पास रहना चाहते चाहिए। मैं रहता हूं ऊपर, तुम नीचे, क्यों? मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त में क्यों? मैं हूं आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों? मैं हूं इस संसार से परे, तो क्यों तुम क्यों इस संसार में लिप्त हो? तो कौन सी बातों का हम चिंतन करें, सिमरन करें, मनन करें, अध्ययन करें, जिससे जिसके सिमरन से मन को सुख मिले, आनंद मिले, हम पहले उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, ऐसी सात बातें निकालेंगे, सबसे पहली बात जिससे हमने क्लास की शुरुआत की, ईश्वरीय प्रेम। किसको याद करना है? परमात्मा प्रेम को याद करना है। याद करो वो समय जब सारे संसार ने धोखा दे दिया, जब सारे संसार ने ठुकरा दिया। याद करो वो समय जब ऐसा लगा कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है, तब किसका प्यार हमें थामे हुए था? बाबा का ही वो प्यार था। उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे, गीत है। उसी दम तेरा वो आना, किस दम? जिस दिन, जिस समय, जिस पल जीवन अब बिखरने ही वाला था, इतना दुख मिला था संसार से, और भगवान का प्यार उस दिन प्राप्त हुआ, अनुभव हो गया, और आंखों से झरझर आंसू बह गए। वो आंसू बहुत बहुत महंगे हैं। संसार के लोग एक दूसरों के लिए रोते हैं, उन आंसुओं का क्या मोल? जो आंसू परमात्मा प्रेम में आ जाए, बाबा क्या कहते हैं, मैं उन आंसुओं को अपने दिल के डब्बी में रखता हूं। क्या ऐसे प्रेम के आंसू हमारी आंखों से आए हैं? कैसा चित्त चाहिए परमात्मा के लिए रोने के लिए? कैसी पवित्रता चाहिए? कैसी ब्रह्मचर्य की अखंड धारणा चाहिए? कैसी उस श्रीमत को पालन करने की चाह, जहां जीवन ही श्रीमत बन जाए, तभी आंसू आ सकते हैं, वरना नहीं। बकेट भर भर के आंसू बहाते हैं लोग संसार में एक दूसरों के लिए, क्या भगवान के लिए भी आंसू आते हैं? क्या उसने जो कुछ किया वो याद है? परमात्मा स्नेह में खो जाना ही योग है, ज्ञान है, मोती है, हीरे है। तो सबसे पहली बात किसको याद करेंगे? ईश्वरीय स्नेह को। दूसरा, ईश्वरीय प्राप्ति को, परमात्मा प्राप्तियों को। जब से हम बाबा के बने अब तक हमने क्या क्या पाया? यदि व्यक्ति इस बात का चिंतन करता है, मेरे पास क्या नहीं है, निरंतर कंप्लेन ही लेके जाता है, ये व्यक्ति ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, ये डिपार्टमेंट से ठीक नहीं, ये ब्राह्मण परिवार के लोग ठीक नहीं, क्या करे? एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा, जब बाबा बच्चों की बहुत ज्यादा कंप्लेन सुनते हैं तो रेडियो स्विच ऑफ कर देते हैं वतन का। और जब प्राप्तियों का चिंतन करते तो आवाज फुल कर देते, सारे परमधाम में, उस निर्वाण में उस बच्चे की आवाज गूंजती है। तो भगवान की ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं है? जब देखो तब फोन आता है परमधाम में नीचे से, तो कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। मौसम ठीक नहीं है, व्यक्ति ठीक नहीं है, ड्रामा ठीक नहीं है, भगवान भी ठीक नहीं है, साधन ठीक नहीं, वस्तुएं ठीक नहीं, शरीर के हिसाब किताब बहुत है, क्या करें। बाबा ने अभी अभी उत्तर दे दिया है, हिसाब किताब बहुत है तो क्या करो। सबसे पहले तो खुशी की टैबलेट, खुशी का इंजेक्शन, खुशी की खुराक, ज्ञान से शरीर, ज्ञान के लाइट और माइट से शरीर को चलाओ। बीमार पड़ना अर्थात वतन से निमंत्रण है, आ जाओ अष्टलीलाएं करने। सारे उत्तर तो दे दिए, ये भी ना सोचो कोई अनपढ़ है, अनपढ़ है, बुजुर्ग है, अनुभव की कहानियां सुनाओ। दूसरा याद करना है, हमने उससे क्या क्या पाया है। जो हमने पाया शायद किसी ने नहीं पाया। प्राप्तियों को याद करना, प्राप्तियों की लिस्ट निकालना, प्राप्तियों का चिंतन करना, प्राप्तियों का मनन करना, प्राप्तियों में ही रहना। दूसरा, तीसरा, परमात्मा मदद का सिमरन करना। वो कौन से ऐसे पल थे जीवन में, ब्राह्मण बने तब से अब तक, जब ऐसा लगा कि कोई नहीं है और अचानक अकस्मात एक मदद आ गई और वो मदद उसने भेजी थी, उस मदद को याद करना। एक ऐसी समस्या थी जिसे सुलझाना तो मनुष्य के बस के बाहर का था, उस समस्या में भी उसकी मदद आ गई। क्या हमने बैठकर उसे धन्यवाद दिया है। विदेश में वो लोग एक ग्रेटिट्यूड रजिस्टर रखते हैं, ग्रेटिट्यूड अर्थात थैंकफुल, धन्यवाद, शुक्रिया। रात में सोने से पहले हर चीज के लिए थैंक यू, जिसने भोजन बनाया उसको थैंक यू, जिसने ज्ञान सुनाया उसको थैंक यू, जिससे कुछ हमने सीखा उससे थैंक यू, इस प्रकृति के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड में पॉजिटिव एनर्जी है, धन्यवाद में जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा है। जैसे ही हम दिल से कहते हैं कि तेरा शुक्रिया, तो हृदय में, चित्त में एक ऊर्जा का संचार होता है। तो तीसरा किसका सिमरन करना है, परमात्मा मदद का। बार बार अपने जीवन को देखना है, जीवन की इस यात्रा में यहां वो मिल गया और तब से उसने कैसी कैसी मदद की है, गुप्त गुप्त रूप से मदद की है। वो ऐसी कुछ कुछ मदद है जो हमको भी नहीं पता, पर उसने वो की। तीसरा, चौथा, परमात्मा छत्र छाया। परमात्मा छत्र छाया का सिमरन, परमात्मा छत्र छाया का अनुभव। ऐसी सिचुएशन थी कि हमको लगा जैसे ऊपर से कोई एक छत्र चल रहा है। मोहम्मद पैगंबर के जीवन में बताते हैं कि जब वो रेगिस्तान में अकेला चलता था तो ऊपर से बादल, जहां जहां वो चलता था ऊपर से बादल उसके ऊपर ऊपर चलते थे और उसकी छाया उस पर पड़ती थी। कौन से बादल थे, दूसरों को नहीं दिखते थे वो बादल, केवल उसी को दिखते थे और उसको पता भी होता था कि ये बादल कौन भेज रहा है। क्या हमें ऐसा अनुभव होता है कि जहां हम जा रहे हैं, जहां से हम गुजर रहे हैं, वहां पर एक अदृश्य छत्र छाया है। मैं अकेले हूं ही नहीं, वो निरंतर साथ चल रहा है, उसकी छाया मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां वो है। ये अनुभव, परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करना। अगला, परमात्मा साथ का अनुभव। उसकी छत्र छाया भी है तो वो साथ भी है। विदेश के एक लेखक ने कविता लिखी है जिसमें वो कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि मैं एक रेगिस्तान से अकेले जा रहा हूं और भगवान मेरे साथ साथ है। फिर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो दो पद चिन्ह है, एक तो मेरा दो और भगवान के दो, और हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अचानक तूफान आ जाता है और तूफान जब आता है तो मैं थोड़ा घबराता हूं, परंतु फिर भी अपने आप को बचाते हुए मैं चलने लगता हूं, और उस समय देखता हूं कि भगवान के जो दो चिन्ह थे वो है ही नहीं। तूफान शांत हो जाता है और फिर वो भगवान से कहता है कि जब सब कुछ ठीक था तब तुम मेरे साथ थे, पर जब जीवन में तूफान आ गया तभी तुमने मुझे छोड़ दिया। सभी ने सुना होगा, भगवान क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर चल रहा था। ये अनुभव कि हम भगवान मेरे साथ भी है, हम उसकी गोद में है। देखो जैसे कोई एक व्यक्ति चल रहा है, उसके दो बेटे हैं, एक दोनों ही छोटे हैं, परंतु एक बेटे को उसने गोदी में ले लिया, एक बेटे को हाथ पकड़ के चल रहा है, और अचानक एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष आ जाता है। तो जो बेटे का उसने हाथ पकड़ा है या जिस बेटे ने उसका हाथ पकड़ा है वो तालियां बजाने लगता है इंद्रधनुष को देखकर, और तालियां बजाते बजाते इतनी भीड़ में वो कहीं खो जाता है। पर जो गोद में रहता है वो जैसे ही इंद्रधनुष देखता है वो भी ताली बजाता है, परंतु जब वो ताली बजाता है तो वो खोता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हाथ नहीं पकड़ा है, वो तो कहां है, गोद में है। हमने हाथ पकड़ा है उसका या उसकी गोद में है? गोद में है या केवल हाथ पकड़ा है? हाथ पकड़ा तो संभावना है छूट सकता है, दिखाया है रामायण में, हमको बहुत अच्छा लगता है ये उदाहरण। जब श्री राम सीता और लक्ष्मण केवट की नाव में बैठते हैं और नाव चलने लगती है, केवट पता है ना खिवैया, तो वो नाव कभी इस ओर ले जाता है कभी उस ओर ले जाता है, कभी इस ओर ले जाता है कभी उस ओर ले जाता है। राम जी कहते हैं केवट हमको डर लग रहा है, हम कहीं गिर ना जाए, तुम ऐसे ऐसे नाव क्यों चलाते हो? तो केवट बहुत ही चतुर होता है, वो कहता है आपको यदि डर लग रहा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि वो जानता है यदि आत्मा परमात्मा का हाथ पकड़े तो कोई भरोसा नहीं आत्मा का, छूट सकता है किसी कब किसी भी वक्त। इसलिए क्या कहता है, हे राम तुम ही मेरा हाथ पकड़ लो, बहुत ही चतुर भक्त दिखाया है। भगवान ही जिसका हाथ पकड़ ले, हमने नहीं पकड़ा उसने आकर पकड़ा है, तो फिर भटकने का खोने का चांस संभावना बहुत कम है। क्या ऐसा हमने उसने हमारा हाथ पकड़ा है? वो तो कहता है मैंने पकड़ा है, परंतु बच्चे बाप से भी अधिक शक्तिशाली है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने क्या कहा, बच्चे बाप से भी अधिक शक्तिशाली क्या कर दे है, बाप तो चाहता है बाप और बच्चे कंबाइंड है, परंतु बच्चे बाप को भी अलग कर देते हैं, इतने पावरफुल है। तो किसको याद करना है, परमात्मा साथ को। कितने हो गए, पांच। उसके बाद जब से हम बाबा के बने तब से लेकर अब तक परमात्मा खजाने उसने क्या क्या दिए हैं उसका सिमरन करते रहना है सारे दिन भर। ऐसे नहीं सुबह अमृत वेले कर लिया और हो गया, बीच बीच में उन खजानों का चिंतन, जिसको हम कहेंगे खजाने कहो या भाग्य कहो या प्राप्तियां कहो, परमात्मा खजाने, परमात्मा प्राप्तियां या परमात्मा भाग्य। संडे की मुरली में क्या कहा था बाबा ने, उधर संसार में जन्मपत्री नामकरण से पहली निकाली जाती है। यहाँ पर भी तुम ब्रह्मा कुमार बनने से पहले ही बाप ने तुम्हारी जन्मपत्री में एक लंबी लकीर खींच दी है भाग्य की और वरदान दे दिया है। वरदान तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है, जो स्मृति स्वरूप है वो स्वतः ही वरदान के अधिकारी है। वरदान तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो परमात्मा प्राप्तियों को याद करना, अगला परमात्मा ज्ञान को याद करना। एक अव्यक्त मुरली, साकार मुरली में बाबा ने कहा, एक है बाप को याद करना, दूसरा है बाप के ज्ञान को याद करना। अगला वाक्य था, बाप को याद करने में बाप को याद करने से भी ज्यादा फायदे हैं, बाप के ज्ञान को याद करने से। साकार महावाक्य है, बाप के ज्ञान को याद करने से बाप को याद करने से भी ज्यादा फायदे हैं, ऐसा बाबा ने खुद कहा है। एक दूसरी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, चाहे बाप को याद करो या बाप के ज्ञान को याद करो, दोनों ही एक है। मुरलीधर से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। कोई कहे हमें मुरली से तो बहुत प्यार है, बाबा से बहुत प्यार है, छाती चीर कर बताएंगे तो अंदर बाबा, परंतु मुरली का मत बताओ। सुमिरन किसका करना है? ईश्वरीय ज्ञान का। तो ऐसी ये सात बातें हैं। परमात्मा फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा योग। किसको याद करेंगे? परमात्मा प्रेम को, दूसरा परमात्मा प्राप्तियों को, तीसरा परमात्मा मदद को, परमात्मा साथ को, परमात्मा छत्र छाया को, परमात्मा खजानों को, परमात्मा ज्ञान को, और भी ऐड किया जा सकता है परमात्मा वरदानों को। वरदान में शक्ति है, कुछ दिन पहले स्लोगन था, कौन सी? आंख को भी पानी, आंख जैसी परिस्थिति भी क्या हो जाएगी? पानी, इतनी पावर है। तो फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, जीवन की अनंत यात्रा में आज मैं आत्मा याद कर रही हूं उन पलों को, जब जीवन में पहली बार परमात्मा स्नेह का अनुभव हुआ था। याद आ रहे हैं वो आंसू, याद आ रहा है वह वातावरण, वो देह से परे अवस्था, जब देहभान भूल गया था और मैं आत्मा पहली बार ईश्वरीय प्रेम में खो गई थी। कितना गहरा अनुभव था, याद कर रही हूं उस पल को, जब ऐसा आंसू था, बाबा ने क्या क्या भर दिया है जीवन में। याद आ रहा है वह दिन जब उसकी मदद अचानक वो मदद आकर न मालूम कैसी कैसी मुश्किलों से, कैसी कैसी समस्याओं से मुझे मुक्त कर दिया था। वो ईश्वरीय साथ, वो ईश्वरीय छत्र छाया, उसके दिए वो खजाने, उसके रोज के दिए हुए वरदान, कितना मैंने उसे याद किया। वो तो निरंतर मुझे याद करता है। क्या मेरा प्यार ऐसा ही एक रस है? एक दृष्टिपात स्वयं के जीवन पर, क्या क्या दिया है उसने, क्या कभी बैठकर मैंने उसका धन्यवाद किया है? क्या कभी उससे कहा है कि बस बाबा और कुछ नहीं चाहिए? ये जीवन धन्य हो गया है तुम्हें पाकर बाबा। सारे दुख दूर हुए, सारी शिकायतें समस्याएं समाप्त हुई। जब तुम आ गए तो और क्या चाहिए? परमात्मा प्रेम ही योग है। इस प्रेम में समा जाना ही ज्ञान। मैं आत्मा, इसी योग का और इसी ज्ञान का आज अनुभव करती हूं। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिसको याद करते ही आत्मा दुखी हो जाती है? ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिनका सिमरन करते ही मन उदास हो जाता है? ऐसी वो कौन सी बातें हैं जैसे ही उनका ख्याल आता है एक अज्ञात सी उदासी छा जाती है? सिमर सिमर जो सुख पाना है वो सिमर सिमर दुख भी पाना हो सकता है। जैसे यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, यदि किसी माता का बेटा बहुत दूर कहीं है विदेश में या कहीं भारत में ही और अचानक उसकी याद आ जाए तो क्या होता है? आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्मृति और स्वरूप, तुरंत स्मृति आई और स्वरूप बन गया। स्मृति में इतनी शक्ति है संकल्पों में कि जो आया और हम तुरंत उसका स्वरूप बन जाते हैं। सिमरन किया और बार बार यदि सिमरन हुआ किसी दुख की घटना का तो संपूर्ण जीवन ही दुखमय हो जाता है। तो वो कौन सी बातें हैं जैसे हमने सुख की बातें निकाली, क्या ऐसी कोई दूसरी बातें भी है कि जिनको याद करते ही दुखी हो जाते हैं? कौन कौन सी है वो? भाइयों की तरफ से सबसे पहले, भाई थोड़े कम दुखी होते हैं, बराबर है कि ज्यादा होते हैं? दिखाते नहीं है। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं कि जिनको हम याद करते ही दुख का अनुभव होता है? कौन सी बातें हैं? कोई भी बताए। हम जीवन में हुई जो भी दुखद घटना हुई है, वो ऐसी अप्रिय घटना, दुखद घटना, जैसे ही याद करो, ये जो टाइम पीरियड है ये भूल जाता है और हम वहीं पहुंच जाते जहां थे, और वो उस समय जो अवस्था थी वो अवस्था फिर से यहां क्रिएट हो जाती है, स्मृति। दुख की घटनाएं, दुख की बातें, जब जीवन में ऐसा दुख आ गया तो क्या हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। एक दूसरा धोखा, यदि किसी ने हमको धोखा दिया है तो हम क्या हो जाते हैं, उसको यदि याद करें दुखी हो जाते हैं। तीसरा दोष, दोषारोपण, एक्यूजेशन, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया था, फिर भी हम पर यदि ब्लेम लगाया जाए, लगाया गया था और उस बात को बहुत दिन हो गए, परंतु अब उस बात को हम याद करते तो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अगला अविश्वास, अगला अविश्वास, अविश्वास यदि हमने किसी के साथ सेवा की, किसी की सेवा की, चाहे यज्ञ में या चाहे संसार में कहीं किसी ऑफिस में, और हमारे जो बड़े हैं हमने दिन रात सेवा की, दिन रात सिंसियरली काम किया, जॉब किया, और कोई अचानक हम पे अविश्वास जताए, कोई कह दे कि तुम्हारा क्या भरोसा जबकि हम दिन रात काम कर रहे हैं, तो खुशी होगी या दुख होगा, दुख हुआ, हुआ था, बहुत समय हो गया, क्योंकि शायद तब हमने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया था और वो बात हमारे दिल में छप गई, अंदर इतनी चली गई कि बाद में वो दब गई और दबी की दबी रह गई, ऊपर से बहुत सारा ज्ञान उसके ऊपर आ गया फिर, पर वो बात अभी भी वही है और अभी हम यहां हैं, वो बात हुई थी यहां, जैसे ही यहां उसकी याद करो वो वापस निकल कर बाहर आ जाती है। तो अविश्वास, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है, 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर से अपने जीवन को देखेंगे, वो जो भी अप्रिय घटनाएं थी उनको इस तरह याद नहीं करेंगे कि हम याद कर रहे, साक्षी होकर, जैसे हम यहां हैं, जैसे सड़क पर हम हैं और गाड़ियां जा रही है आ रही है, वैसे ये जीवन है, इस जीवन में जैसे ये झाड़ है, ये पंछी है, आकर बैठे और चले गए, इतने साक्षी भाव से उन चीजों को याद करना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, अलग रहना है, खाली देखना है, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, ठीक है, इसका अभ्यास हम करेंगे।
याद करो मन से शिव को, दिल याद करो मन
मुक्त होने का मार्ग क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग उनके जीवन में जो कुछ हुआ है उसको स्वीकार ही नहीं करते। जब तक हम ये स्वीकार न कर ले कि हाँ वो चीज हुई थी और मुझे दुख हुआ था, एक्सेप्टेंस जब तक नहीं है उससे मुक्ति का मार्ग भी नहीं निकलेगा। है जो बातें हम बता रहे हैं वो बहुत ही अप्रिय बातें हैं, परंतु जीवन में यदि हुई है तो पहला है उसको स्वीकार करना। हाँ, किसी ने धोखा दिया, बहुत बुरा लगा। किसी ने अविश्वास दिखाया, बुरा लगा। अप्रिय घटना हुई, बुरा लगा। दोष लगाया, ब्लेम किया, बुरा लगा। किसी ने इंसल्ट की, अपमानित किया, वो भी सबके सामने यदि कर दे तो। एक है चुपचाप अकेले में और दूसरा है सबके सामने। बुरा लगता है। ऐसा जीवन में बहुत कुछ होते रहेगा, क्योंकि हमने क्या क्या किया है पूर्व जन्म में या इस जन्म में हमें पता नहीं। इतने सूक्ष्म हिसाब है, इतने सूक्ष्म हिसाब है कि हमें ही नहीं पता ये क्या हो रहा है। जहां हमने जन्म लिया, पति पत्नी बच्चे सास ससुर ये सब लोग जो आसपास आए हैं, इनके साथ एक बहुत ही गहरे तल पर हमारा संबंध है। इसके लिए जो कुछ भी हो रहा है वो चुप तो हो रहा है, ये हम सबको ज्ञात है, फिर भी हम प्रभावित होते हैं। अप्रिय घटनाएं बहुत है, तो हमने कहा कि उनको दबाना नहीं है, सबसे पहले तो उनको देखना है। मुक्ति का मार्ग है डिटैचमेंट, मुक्ति का मार्ग है डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप। मुक्ति का मार्ग वो नहीं है कि उसको हम दबा दें, उसको देखो। जीवन को बार बार जैसे एक स्क्रीन है जिसपे हम देख रहे, ये ऐसा ऐसा यहां हुआ, वो पल जब हम विकारों के वशीभूत हो गए थे, वो पल जिस समय हमको संपूर्ण ज्ञान था और ज्ञान होने के बावजूद भी क्रोध आ गया, काम की तीव्र इच्छा, लोभ मोह अहंकार सब कुछ अपने आप प्रकट हुआ थोड़े पल के लिए और विलीन हो गया, परंतु आया तो, और जब आ रहा है इसका मतलब अभी भी बीज है। चीजों को देखना साक्षी होकर, यह है जीवन, यहां से यहां तक इसमें ये हुआ और मैं इसे देख रहा हूं। डर के भागना नहीं है, पलायनवादी नहीं बनना है, एस्केपिस्ट नहीं होना है। देखना, स्वीकार करो ये हुआ है और फिर अभी इसके ऊपर काम करो कि यदि ये फिर से हो तो क्या किया जाए। अब इसके ऊपर काम करो, यदि फिर से ऐसा हो जाए तो क्या मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं अचल अडोल रह सकूं। ऐसी ही परिस्थितियां इससे भी भयानक। एक चित्र हमको बहुत अच्छा लगता है, किसी ने भेजा था, एक दो हिरण का चित्र। एक हिरण ये बाजू में है, जवान है, उसको एक तीर लगा है और वो गिर गया। वही हिरण अब बूढ़ा हो गया, पूरा तीर ही तीर लगे हुए, फिर भी खड़ा हुआ है। मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता कहां से आई है, कैसे आएगी, ये इस पर चिंतन करना है कि मैं स्पिरिचुअली मैच्योर कैसे बनूं। किसी ने थोड़ा कह दिया दुखी हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया दुखी हो गए, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया दुखी हो गए। दुख लेने का संस्कार, दुख देने के संस्कार से भी खतरनाक है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद खुद को ही दुखी करना, खुद खुद पर ही आरोप लगाना और बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, ये सोचना मेरे ही वजह से सब कुछ काम बिगड़ रहा है, मुझ में कुछ नहीं है, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन ग्रंथि, ये बहुत खतरनाक वस्तु है, हीन ग्रंथि। ये एग्जाम में पास नहीं कर सकूंगा, ये पढ़ाई मेरे से नहीं हो सकेगी, ये सेवा मैं नहीं कर सकता, ये विकारों से जीतना मेरे बस की बात नहीं है, एक ना एक दिन तो हो ही जाएंगे उसमें अलबेलापन। जितनी भी अप्रिय घटनाएं हैं, यदि हम केवल उनका चिंतन करते रहेंगे तो अभी भी दुखी होंगे। हम कह रहे हैं चिंतन नहीं, उनको देखना, वो भी कैसे, साक्षी होकर देखना, और वो भी कब, योग की अवस्था में, अशरीरीपन की अवस्था में, क्योंकि वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में है, और जो कुछ हम सोचते हैं केवल कॉन्शियस माइंड, चेतन मन में सोचते, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, और वो दुख वैसे ही रहता है, वो विकार वैसे ही रहता है, जो क्रोध पहले था 10 साल पहले अब भी चल रहा है, केवल अवसर की तलाश है, हम विकारों को छोड़ चुके हैं, परंतु क्या वास्तव में छोड़ा है, क्या वैसी ही परिस्थितियां अब तैयार हो जाए तो क्या वैसी ही विकारों का आकर्षण होगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा है जो अनुभवी है वो जाकर समझाए कि हम पवित्र हैं, पहले विकार में थे अब पवित्र बने हैं, अब तुम समझो। बाबा ने कहा वो नहीं तो तुमसे पूछेंगे, तुमको तो विकारों का अनुभव ही नहीं है, कुमार और कुमारियों से पूछेंगे। जो भी हुआ, चाहे विकार की घटना हुई, चाहे दुख की घटना हुई, उदासी आई, शॉक लगा जीवन में, जबरदस्त शॉक, ऐसा किसी ने धोखा दे दिया, अविश्वास किया, हमने सोचा ही नहीं था ये व्यक्ति भी ऐसा करेगा और उसने कर दिया, और अभी तक उससे आघात से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ये जितनी घटनाएं हुई है पहले तो स्वीकार करो, यस हुई है, सेकेंड स्टेप उनको देखना, और थर्ड स्टेप अपनी शक्ति से अब उसको भस्म करना है, न्यूट्रलाइज कर देना वो सारे इवेंट्स को, क्योंकि फ्यूचर में भी हो सकते। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, न्यूट्रलाइज वो सारे होंगे परम धाम में, कैसे होंगे, परम धाम में, मैं यहां शिव बाबा ऊपर, उसकी सारी किरणें मुझ पे आ रही है, यहां दो काम होंगे, एक तो नई शक्ति आ रही है और जो उसमें पहले से है टेस्ट निगेटिव वो सारा भस्म हो रहा है। तो दोनों ही चाहिए, चिंतन ज्ञान और दूसरा योग, ये दो के आधार से थर्ड स्टेप, वो जो घटना जीवन में हुई थी उसको क्या करना है, समाप्त कर देना है, न्यूट्रलाइज कर देना है। लोग उसको दबा के रखते हैं, जैसे अभी अभी हमारे पास एक पेशेंट आया था, एक गृहस्थी माता जिसके पति ने शरीर छोड़ दिया, तो परिवार तो ज्ञान में है, परंतु क्योंकि ज्ञान में है तो वो रोई नहीं, बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि नहीं तो ब्राह्मण परिवार वाले क्या कहेंगे, ज्ञानी होकर रोते हो, रोने की तो बहुत था उसको, पति ने शरीर छोड़ दिया, परंतु आत्मा है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, सारा ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है, उसको 1 साल हो गया और अभी वो एकदम डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि दुख तो इतना ज्यादा हुआ था परंतु दिखावा थोड़ा सा कि हम भी तो ज्ञानी हैं, हम भी तो योगी हैं, नहीं तो ब्राह्मण परिवार वाले क्या कहेंगे, सब लोग इतना मानते हैं, दमन हो गया, सप्रेशन हो गया फीलिंग्स का, और वो फीलिंग्स का सप्रेशन होने के बाद उसको प्रकट ही नहीं किया गया और वो डिप्रेशन बनता गया, फिर डिप्रेशन की गोलियां चालू हो गई, और गोलियां भी 1 से 2, फिर 2 से 3 और 4। हम ये करने को नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइज करना उसको, जो इवेंट हुई है, जो घटना हुई है, जो बात हुई है, दिल को जिसने चोट पहुंचाई थी, और वो अभी भी याद आती है, और अभी भी याद आ गई तो यदि यहां से लोग मधुबन में जाते और मधुबन में अचानक से इधर की घटनाएं याद आती है और वहां जाके दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो हुआ था धोखा, अविश्वास, ब्लेम, सॉरो, डीप सॉरो, इंसल्ट, या तो शायद हमने उन आत्माओं को माफ नहीं किया है, या अभी भी सूक्ष्म बदले की भावना है, अवसर की तलाश है कि वो अगर ऐसा करे तो हम भी उनको ऐसा कहेंगे, ये सब कुछ चल रहा है। और यदि वो विकार की बात है उसके भी यही प्रिंसिपल है, वो दमन हो गया है, खाली उसको सप्रेस कर दिया है, उसको चेंज, ट्रांसफॉर्म, सब्लिमेट, सब्लिमेशन नहीं किया है उसका। तो सिमर सिमर दुख पाने का एक लिखो पहले तो, ये 10 बातें हैं या ये 7 बातें हैं जो जीवन में हुई है, बहुत दुखी है, दुखद घटनाएं हैं, ठीक है। अब योग की अवस्था में फिर से उन घटनाओं को देखना, फिर बाबा के पास जाना और सबको भस्म करना, भस्म करते हुए देखना, जैसे वो देवियों का दिखाते हैं ना, असुर भाग रहा है, देवी यहां से हाथ करती है, यहां से कुछ आग का गोला निकलता है, वो असुर भाग रहा है, आग का गोला उसके पीछे 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 जा रहा है, पीछे 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 जा रहा है, और फिर उसको भस्म कर देता है। वैसे उस घटना को, उस विचार को, उस संकल्प को, उस संस्कार को देखना, जैसे आत्मा से वो संस्कार निकल के भाग रहा है और फिर आत्मा से एक शक्ति का गोला निकल के उसका पीछा कर रहा है और उसको भस्म कर रहा है। एक दिन नहीं, रोज, तब तक जब तक कि अविद्या हो जाए, हमारा कोई संबंध ही नहीं, ऐसी अवस्था आ जाए तो यह अभ्यास करना है। अभी हम फिर से एक योग का प्रयोग करेंगे जिसमें हम परमधाम में जाएंगे और परमधाम में बाबा के साथ बैठेंगे और उस परमधाम की अशरीरी अवस्था से अपने जीवन को देखना है। क्या करेंगे? उस परमधाम में बैठकर अपने जीवन की सारी घटनाओं को देखना है, फिर सोचना है बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है या फिर मैं बाबा से कंबाइंड हो गया हूं और मेरी सारी शक्तियां उन सभी घटनाओं को, संकल्पों को, विकारों के अंश को, दुख को, दर्द को, पीड़ा को नष्ट कर रही है। मैं आत्मा शुद्ध हो रही हूं। चले, मैं सुख के सागर में समाई हुई, सुख स्वरूप आत्मा, परमात्म प्रेम से भरी हुई, परमात्म शक्तियों से श्रृंगारित, परमात्म खजानों से भरपूर, सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता, आज मैं आत्मा चलती हूं इस संसार से परे, आकाश में और ऊपर अंतरिक्ष में और ऊपर सूक्ष्म वतन में, मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि ले रहा हूं, इस सूक्ष्म देह को यहीं छोड़, मैं पहुंच जाता हूं परम धाम। निराकार दुनिया, आत्माओं का यह धाम, यह ब्रह्म देश, इस ब्रह्म लोक में मैं आत्मा, सुख के सागर से, सुख की अनंत धाराएं मुझ पे समा रही है। मैं आत्मा सुख का अनुभव कर रही हूं। निर्वाण में हूं, शांति धाम में हूं, संपूर्ण शांति का अनुभव। और आज मैं यहां से देख रही हूं स्वयं को, परम धाम की इस अशरीरी अवस्था में अपने समग्र जीवन को देख रहे हैं। शिव बाबा की सुख की यह किरणें मुझ पर है और ये किरणें मैं जीवन की इन सभी घटनाओं के ऊपर डाल रही हूं, इन सभी बातों के ऊपर, ये सारे संकल्प, बोध, कर्म, संबंध, संपर्क मेरी इन किरणों से शुद्ध हो रहे हैं। मेरा संपूर्ण जीवन पुनः शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। मैं अशरीरी आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूं, वो और मैं एक। धीरे धीरे मैं आत्मा पुनः नीचे आ रही हूं, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म तन धारण कर नीचे उतरती हूं और इस स्थूल देह में प्रवेश करती हूं। मैं फरिश्ता अत्यंत हल्कापन महसूस कर रही हूं। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर रही हूं। जैसे मैं आत्मा हूं, मेरे आसपास जितनी भी आत्माएं उनको भी मैं उसी स्वरूप में देखती हूं। मैं फरिश्ता अब धीरे धीरे संपूर्ण मौन की अवस्था में बिना कोई आवाज किए आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हुए अत्यंत धीरे धीरे अपने ही स्थान पर खड़े रहेंगे। सभी अपने ही स्थान पर बिना कोई आवाज के संपूर्ण मौन आत्मिक स्थिति अव्यक्त स्थिति मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। और अभी धीरे धीरे अपने ही स्थान पर गोल घूमेंगे, बहुत धीरे धीरे सभी को आत्मा देखते हुए। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। इस हॉल में ये सब आत्माओं का समूह है, चारों ओर केवल और केवल आत्माएं हैं, शरीर है ही नहीं। तीन बार अपने ही स्थान पर एकदम धीरे धीरे घूमेंगे, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए, जैसे कि यही परमधाम है। चारों ओर अव्यक्त धारा बह रही है, केवल आत्माएं हैं, देह है ही नहीं, कोई आवाज नहीं। मौन, संपूर्ण मौन। मैं एक अव्यक्त फरिश्ता हूं, अत्यंत सुख स्वरूप फरिश्ता, देख रहा हूं इस संसार में मेरे जिन भी आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। इस समय वो सभी इसी हॉल में है, अव्यक्त रूप से, साकार रूप से, और उनके साथ मेरे सारे हिसाब किताब चुक्त हो गए। आत्मिक दृष्टि का यह करंट, आत्मिक दृष्टि के वाइब्रेशंस धीरे धीरे अब वापस नीचे बैठ जाएंगे। कोई आवाज नहीं, संपूर्ण मौन, अव्यक्त स्थिति। मैं फरिश्ता, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान चमकता सितारा, आज महसूस कर रहा हूं सारी चिंताएं, सारे बोझ, सारे दुख, सारी पीड़ाएं भर ली गई है। मैं अत्यंत शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। परमात्मा साथ, परमात्मा प्राप्तिया, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा भाग्य, परमात्मा खजाने, परमात्मा वरदानों से परिपूर्ण मैं आत्मा आज धन्य हो गई। ओम शांति।